संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में देवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। ये जो पंक्ति अभी आपके सामने दोहराई गई कि द्रव्यानुसारि चरणम चरणानुसारि द्रव्यम, ये महाशास्त्र प्रवचनसार के जो टीका आचार्य अमृतचंद देव ने लिखी है तत्व प्रदीप का नाम की, उसमें गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार की समाप्ति पर लिखा हुआ छंद है, उसकी पहली पंक्ति है। उस प्रवचन सार ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 125 साल से ये विश्वविद्यालय के कोर्सों में सुनिश्चित है। समय सार कुंभ का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक भावभूमि के कारण विश्वविद्यालयों में स्थान नहीं पा सका, लेकिन प्रवचन सार की जो स्टाइल है वो ऐसी है कि जो विश्व में अपने भारतीय और बाहर पश्चिमी जगत में जो दर्शन के प्रतिपादन की शैली है, उस शैली में वो प्रतिपादन हुआ है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गे तत्व प्रज्ञापन, माने ज्ञान क्या है और गे क्या है, यही स्टाइल सभी दर्शन है जो देशी और विदेशी उनमें वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन की है, इस कारण उसे स्थान मिला है। मैं उस पर 1500 पेज का अनुशीलन और 600 पेज की टीका लिख रहा हूँ, तो 400 पेज का 450 पेज का सारांश प्रकाशित हो चुका है। ऐसे करीब मैं उस पर 2500-2600 पेज में लिख रहा हूँ। उसकी ये पंक्ति है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन समाप्त हो चुका है, अब आचार्य चारित्र का वर्णन करना चाहती हैं। उसके पहले ये सूचना देते हैं कि द्रव्यानुसारी चरणम, द्रव्य माने द्रव्यान योग, द्रव्यान योग में वस्तु का जो स्वरूप बताया गया है उस स्वरूप की समझ पूर्वक, उस स्वरूप के विश्वास पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक हमें अपने जीवन में सम्यक चारित्र को अपनाना चाहिए, आचरण को धारण करना चाहिए। इसका नाम है द्रव्यानुसारी चरणम। मैंने वस्तु आने क्या कहना चाहते हैं कि समझे बिना जैन दर्शन में कोरा क्रिया कांड धारण कर लेना उससे धर्म होने वाला नहीं है। दलित राम जी की एक पंक्ति है, सम्यक ज्ञानी हो बहुर दृढ़ चारित्र लीजे, पहले सम्यक ज्ञानी बनो और फिर दृढ़ता पूर्वक सम्यक चारित्र को धारण करो। हमारी ऐसी वृत्ति है कि प्रदूषण का समय आया तो हम कुछ अधिक धर्मात्मा हो जाते हैं, और कुछ सुनिश्चित जो हमारे क्रियाकांड हैं उनको करके अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानने लगते हैं। 8-8 दिन के उपवास करते हैं, नहीं करना चाहिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्हें 8 कर्मों के नाम मालूम नहीं है, 7 तत्व के नाम मालूम नहीं है, 6 द्रव्यों के नाम मालूम नहीं है, और तो और 24 तीर्थंकरों के भी नाम याद हो तो बहुत बड़ी गनीमत समझ। उनके लिए याद विषय रखा है, मैं क्या करूं, रमेश भाई ने कि ये समझाओ आप द्रव्यानुसारी चरणम, क्यों कैसा वस्तु का स्थिति है कि जिसने जैन धर्म का नाम भी नहीं सुना है और वो 8-8 दिन का उपवास करके तपस्वी बन गया, जबकि बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए, फिर अंतिम दिन पारणा होती है, फिर पारणा के दिन सारे सैकड़ों लोगों को बुलाया जाता है और वो संत जैसे विराजमान होते हैं, जो भी पुरुष महिला होती है, और लोगों से एक थोड़ा थोड़ा क्या मूंग की दाल का पानी दे तो क्या देते आप लोग मालूम नहीं, शक्कर का पानी जो भी उसको उस नाम अलग है, और एक एक चम्मच में सब लोग डाला करके उन्हें देते हैं। लोग मुझे भी बुला लेते हैं पंचोली जी और क्या, बस मुझसे भी कहते हैं कि आप भी दो, मेरे का गजब हो गया
दे लो।
अभय कुमार जी दिया है किसी को? नहीं दिया आज तक। क्या करें, इस बच्ची को आशीर्वाद दें कि आहार दें? ये आहार तो ये देगी हमें तो इसलिए कि द्रव्यानुसार चरणम, लोक में हर काम को समझ पूर्वक करने का शास्त्रों में निर्देश है। तो व्रत क्या है, उपवास क्या है, ये हमें समझना चाहिए। पन्ने टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक छंद उद्धृत किया है, कसाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते विज्ञेयम् सौप्रवासा शेषम लंघन कम विदु। क्या है इसका, कि वस्तु की समझ पूर्वक चार कसायों का और पांच इंद्रिय के विषयों का और आहार का त्याग, उसका नाम उपवास है। अभी देखिए आहार का सबसे अंत में नाम लिखा, पहले लिखा पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग, उसके पहले लिखा चार कसायों का त्याग, उसके पहले तत्व ज्ञान पूर्वक। क्या जरा भी इस बात का हमें विवेक रहता है कि पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग, आप जानते हैं नहाना श्रृंगार करना बढ़िया बढ़िया सब, ये सब क्या है, ये पांच इंद्रिय के विषय हैं कि नहीं है? और जब वो जलूस निकलता है तो दुल्हन जैसा समान श्रृंगारते हैं उनको, आठ दिन बाद का जलूस निकलता है। तो अपने स्वाध्याय नाम का भी एक तप है और आहार के त्याग उपवास नाम का भी एक तप है। अब इनकी विशेष चर्चा तो मैं तप धर्म के दिन, कौन सी तारीख को पड़ेगा अभय कुमार जी तप धर्म? 25-24-23 तारीख को, 23 को नहीं 22 को, 22 को बताऊंगा विस्तार से। अभी जो मैं दिगंबर प्रयोषण में 10 विषय लेने वाला हूँ ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्दव, बहुत मार्मिक है और आप सब लोगों ने अभी तक सुने नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरे दूसरे विषय चलते हैं। तो जहाँ मैं दिगंबर प्रयोषण में जाता हूँ तो ये विषय लेता हूँ, तो आज तक 25 साल में यहाँ ये विषय नहीं हुए, एक आध विषय कभी हुआ हो तो अलग बात है। तो उसमें मार्मिक दृष्टि से सब बात आएगी। तो पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग में श्रृंगार कैसे हो सकता है, वो तो स्नान तक का त्याग होता है। यदि चार कसायों के त्याग की तरफ किसका ध्यान है, अकेले भोजन को छोड़ देने का नाम उपवास नहीं है। इसके लिए कहते द्रव्यानुसार चरणम, के जो जैन शास्त्रों में जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा भगवान आत्मा के स्वरूप को जो बताया है उसे जानकर पहचान कर और अच्छी तरह से उसमें अपनापन स्थापित होने के बाद जो पांच इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति का त्याग है उसका नाम उपवास है। और शेषम लंघन कम विदु, बाकी को लंघन समझना चाहिए। अकेला आहार का त्याग कर दिया हो तो लंघन समझते हैं? अब आज के जमाने के लोग क्या समझेंगे लंघन को? पुराने जमाने में जो वैद्य लोग इलाज करते थे ना, तो मरीज को लंघन कराते थे, 8 दिन तक खाना बंद, इलाज का स्वरूप ही ये था। आज तो डॉक्टर कहता है दिन में रात में जो भी तुम्हें खाना हो खाओ, कोई छूटे हमारी तरफ से क्यों? ہم پوچھتے ہیں صاحب کوئی پرہیز ہو تو بتا دو. نہیں کوئی پرہیز نہیں, کوئی پرہیز نہیں,
کوئی پرہیز نہیں.
آپ جو کھانا چاہتے کھائیے, آپ جو کھانا وہ لنگن ہے واسطو میں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دربیانوساری چرنم آچرن چارتر کا دھارن تتو جان پوروک ہونا چاہیے. اور دوسری پنکتی کیا چرنانی سار دربدم, یہ ذرا کٹھن ہے کہ بھیا چارتر کے انوسار دربیانیوں کا ادھیان ہونا چاہیے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں دنیش بھائی, ایک ہوتا ہے سداچار اور ایک ہوتا ہے چارتر. سداچار اور چارتر میں کیا فرق ہے؟ وہ سمیک درشن کے پہلے جس کا ہونا انواری ہے اس کا نام ہے سداچار, اور جو سمیک درشن ہونے کے بعد ہوتا ہے اس کا نام ہے چارتر. بہت سرل پریبھاشا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے مکھ سن بہت زیادہ ہیں مکند بھائی ایسے کہ ہمارے تو چرتر بولے بس لیسنا سنجم پیسر ناپ دیتے ہیں, ہم تو سمن رشی کے تو چارتر موہنی کرم کی وجہ سے رنج ماتھی بھی سنجم نہیں ہے. بھائی چکرتی نے 96,000 شادیاں کی تھی تو ہم کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ کیا میں نے سنجم تو چارتر تو سمن دشن ہونے کے بعد ہوگا, اور سمن دشن کب ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے. اس طرح بے چارتر سے سنجم سے جیون میں چھٹی لینا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تتو گیان کا شرابی کبابی کو ہوگا؟ سداچار کیا ہے؟ سات رسنوں کا تیاگ, اشٹمول گنوں کا دھارن, ابش پدارتھوں کا تیاگ, راتری بھوجن کا تیاگ, انچنے پانی کا تیاگ, یہ سداچار ہے. اس کے بنا سمنا درشن نہیں ہوتا. انیائے انیتی اور ابھکش ان تین چیزوں کے تیاگ کے بنا سمنا درشن کی پراپتی کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایک بیماری اور چلی ہے آج کل, ایک بھائی نے میرے سے پرشن بھی کیا تھا, وہ بھائی یہاں ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتا, تو گیانیوں کے ادے بھاو کو نہیں دیکھنا چاہیے, اور وہ اتنا خطرناک, یعنی جو سامان گرست کے بھی جو دراچار نہیں ہو, ایسے دراچار کے پوشن کے لیے کہتے ہیں گیانیوں کا وہ تو ہدے بھاو ہے, اسے ہدے بھاو کو نہیں دیکھنا چاہیے. میرے سے کل پرسن پرسن کیا,
شادی کر لیتے ہیں.
یہ شادی مادی تو بہت سادھارن بات ہے, میں یہاں بولنی نہیں چاہتا ہوں اپنے منہ سے, خیال میں نا ایسا نہیں ہے. انیائے انیتی اور ابھکش یہ تین چیزیں کیا ہیں ذرا سمجھنا. انیائے کیا ہے, انیتی کیا ہے, اور ابھکش کیا ہے؟ جو راج ورودھ ہو اس کا نام ہے انیائے. کس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جس کے پرگٹ ہونے پر آپ کو سزا ہو جائے, جیل میں جانا پڑے, شاستری بھاشا میں اسے بولتے ہیں انیائے. یہاں پر جو انیائے ہے نا, جیسے نیائے شاستر ہوتا ہے اور نیالے ہے, اب وہ نیالے ہے کہ انیالے ہے تو آپ جانو. کبھی بھی جو آتمارتھی جیو ہیں انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے انہیں جیل جانا پڑے, کیونکہ جیل میں جائیں گے تو بولیے پھر وہاں آتما کا چنتمن ہوگا, وہاں سوادھیائے ہوگا, وہاں تمہارا شدھ کھان پان ہوگا, تمہیں وہاں تمہارے انکول کھانا پینا ملے گا. کیوں کہنا ہوگا روزینا بھگوان کے درشن ملیں گے, تو دن سننے آپ آ پاؤ گے. تو ایسا کوئی کاری جیون میں جس سے ہمیں سزا ہو جائے اس کا نام ہے انیائے. اور انیتی کائے کا نام ہے کہ جس کے کرنے سے گورنمنٹ تو آپ کو کچھ نہیں کہے لیکن سماج میں آپ کی نندا ہو اس کا نام ہے انیتک. انیتک کام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ادھارن دیتا ہوں میں آپ کو کہ ہمارے اتر بھارت میں ماما کی لڑکی بالکل اپنی سگی بہن کے سمان ہے, اس کے ساتھ شادی کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا, اور بہن کی لڑکی تو بھانجی پرم پوتر, اور دکشن بھارت میں بھانجی کے ساتھ بھی شادی ہوتی ہے اور ماما کی لڑکی کے ساتھ بھی شادی ہوتی ہے. बोलिए दक्षिण भारत में वो नैतिक है और उत्तर भारत में वो अनैतिक है, ये एक ही होता है, ऐसा ही नैतिक अनैतिक होता है। क्यों? कि उत्तर भारत में उसमें समाज में इतनी अधिक निंदा होगी कि समाज में रहना मुश्किल है, तो अत्यंत तीव्र रात के बिना वो काम संभव नहीं है, इसलिए अनैतिक है, समझ गया। और दक्षिण भारत में यदि आप मामा की लड़की से शादी करेंगे, भांजी से करेंगे, तो कोई कुछ कहने ही वाला नहीं है, समझ गया ना, इसलिए वहां वो नैतिक है। ऐसे अलग अलग जगह के हो सकते हैं। अभी मैं क्या बताऊं आपको, आप गुजरात में खागड़ा खाना नैतिक है और हमारे यहाँ वहां अनैतिक है, तो पंडित गए थे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, बहुत पुरानी बात है, नाम नहीं बताता हूँ, अभय जी जानते हैं, तो वो प्रदूषण में गए ना, तो वहां पर खांसी तो मिलते नहीं है, तो खांसी का एक डब्बा बना कर दिया था, साथ में रख के लेके, तो हमारे यहाँ तो उसे बासी रोटी कहते हैं, वही नहीं खाता, और सुबह उठाए और कहें चाय लाना और अपने खागड़ा निकाले और खागड़ा खाए, तो इतना हल्ला हुआ, कोई पंडित आता है बासी रोटी खाता है सुबह, अरे आपके यहाँ कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ नैतिक हो गया। यानी ये क्यों है अधर्म? इसलिए है कि जहां ऐसा काम करने से हमारी लोक में निंदा हो तो वो तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता। सोमदेव आचार्य ने लिखा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम, यद्यपि शुद्ध हो फिर भी लोक के विरुद्ध हो तो ऐसे काम को नहीं करना चाहिए, आचरण ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आचरण तीव्र राग के बिना संभव नहीं है। और अवश्य क्या है कि जिनके खाने में तिस जीवों का घात हो, अनंत जीवों का घात हो, लोक में जो निंद है, जो नशा उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थ अभक्ष हैं। लेकिन एक और गजब की बात है जो शायद लोगों के ध्यान में नहीं है, क्योंकि मैं जगह जगह देता हूं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। मैंने तो बालबोध पाठमाला भाग दो में लिखा है, जो कम से कम 3 लाख छपी है और 25-4 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाई गई है। क्या लिखा है? एक अनिष नाम का अभक्ष होता है, सुना कभी नाम? क्या मतलब है कि आपको यदि शुगर की बीमारी है और डॉक्टर कहता है कि आप शुगर मत खाइए, केला मत खाइए, संतरा मत खाइए, तो वो आपके लिए अभक्ष है। उसमें कोई जीव का घात नहीं हो रहा, मैं खाऊं तो मेरे लिए भक्ष है और आपके लिए अभक्ष है, उसे बोलते हैं अनिष्ट नाम का अभक्ष, क्योंकि वो भी बिना तीव्र राग के नहीं खाया जा सकता। जानते हैं कि अब भी हाल शुगर बढ़ जाएगी, 50 तकलीफ होगी, आंखें भी जा सकती हैं, क्यों, किडनी भी फेल हो सक्ती है, अब जो होगा सो देखा होगा, क्रमबद्ध में होना होगा सो हो जाएगा, अब मैं तो खाऊंगा। अच्छी क्रमबद्ध समझी तूने, बोलते हैं क्यों, मरना तो एक दिन है ही, अरे वाह अच्छी अनित्य भावना तेरी समझ में आई है, क्यों समझे, जो अपने स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो, जिससे बीमार होने की आशंका हो, मर जाने तक का प्रसंग आए, वो कितना ही पवित्र पदार्थ हो, जैन दर्शन में उसे अभक्ष कहा, और उसके त्याग के बिना ये 3 चीजें सम्यक दर्शन होने के पहले अनिवार्य रूप से चाहिए। गुजरात में इस बात को समझाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ गली गली में सम्मत दृष्टि पैदा होते हैं। बीमारी है गुजरात की खास, तो मैंने गुरुदेव से कहा था, हरी सभा में है याद आपको, नहीं हो सकता, गुरुदेव ने से बोल रहे थे और बोलते बोलते बोले पंडित जी क्या है तुम्हारे यहाँ तो गली गली में अनुवृत्ति और महावृत्ति मिलेंगे, उनका महाराज हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि सोनगढ़ में कमरे कमरे में संभव दृष्टि मिलेंगे। आचरण का ठिकाना नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, अन्याय अन्याय से कौन बचा है। देखो मैं आपसे, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मोटानी जी इतनी बात मैं आपसे कहता हूँ कि हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, क्या हम किसी वक्त भी कानून की ऐसी गिरफ्त में नहीं आ सकते हैं कि हमें जेल जाना पड़े। तो बचे हैं भाग्य से, कर्म के उदय से, कि इतने इतने कानूनी दिक्कतें, इतने इतने इस तरह के काम समझ में आए ना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ना कहीं सब उलझते हैं। आपने जाकर के देख लेना, क्यों नहीं भाई है? क्या है, क्या है? तो आपको सम्मत आसन से क्यों नहीं हो सकता पवित्र आसन के बिना? तो ये घटना सच्ची है। तो मुरारजी देसाई वित्त मंत्री थे और सबसे पहले उन्होंने सोने पे कंट्रोल किया था। आपको कुछ याद होगा, इन नई उम्र वालों को तो कुछ पता ही नहीं हुआ है ना,
गोल्ड कंट्रोल,
गोल्ड कंट्रोल है मालूम, सन 62 की बात है, सन 61-62 की बात है, कितने 45 साल पहले की सही घटना। मैं इसी दिगंबर परिसर में सागर गया था, सागर एक नगर है हमारे यहाँ, जहाँ हजारों जैनी रहते हैं, बहुत जैनी रहते हैं परिसर में। तो मैं प्रवचन कर रहा था तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि पंडित जी ये आपके सम्यक दर्शन में स्मगलिंग चल सकती है कि नहीं। मैं आपको सच बोलता हूँ, उस दिन तक मैं स्मगलिंग शब्द का अर्थ नहीं जानता था कि क्या होता है, क्या समझ में नहीं, क्या मेरी समझ में नहीं आया क्या पूछते हो तुम। तो किसी ने आकर मुझे बताया कि वहां पर जितने जैनी हैं आधे सर्राफी का धंधा करते हैं सोने का, आधे जैनी, जैनी माने 10,000 जैनी होंगे कम से कम, उन आधों के धंधा सोने चांदी का, और गोल्ड कंट्रोल की होने की वजह से जो कल तक साहूकार थे आज सब चोर हो गए। हर एक के घर में गोल्ड है, हर एक को लाना है, हर एक को बेचना है, और कानून से बोले हम। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बंबई से बिस्कुट लाते हैं, तो यहाँ आके सागर में बेचते हैं, तो हम ये धंधा आपके सम्मा दर्शन के रहते हुए कर सकते हैं कि नहीं, तो हम आपकी पार्टी में आने को तैयार हैं, परमिशन दो। तो बड़ी सवाल है, किसने किया, मजाक किया उसने मेरे से। मैंने कहा तुम बंबई से बिस्कुट क्यों लाते हो, अपने जेवी मंगाराम के ग्वालियर में बहुत अच्छे बनते हैं। उस दिन मैं बिस्कुट का ये अर्थ नहीं समझता था कि कोई सोने के भी बिस्कुट होते हैं। 21 बरस का था, दुनियादारी कुछ पता नहीं था। तो मैंने कहा क्यों लाते हो वहां से बिस्कुट, तो किसी ने बताया कि सोने का 10 तोला का एक सिक्का होता है, उसको बिस्कुट बोलते हैं, और हम वहां से लाते हैं, और वो गैर कानूनी है, और जहां पकड़े लाए तो जेल में जाने वाले हैं। तो अब हम क्या करें बताइए, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत मुमुक्षु भी थे, अच्छे विद्वान भी थे, वो भी वही काम करते थे। आप जानते हैं हमारे युगल किशोर जी युगल हैं, वो भी सर्राफ का धंधा करते थे, और उसी दिन से उनने ये धंधा छोड़ दिया, फिर नहीं किया, क्योंकि वो चोर का काम हो गया। आपको मालूम है बात, मैंने क्या जवाब दिया वो सुनना। मैंने कहा कि आप ऐसा करना कि बंबई से जब बिस्कुट लेके चलो तो तुम एक पेंसिल और एक कागज लेकर अपने आत्मा के बारे में जो भी जानते हो, देखते हो, सुना हो, पढ़ा लिखा हो, वो लिखना। सम्मा दर्शन किसे कहते हैं वो लिखना। और जब तुम सागर उतर के आ जाओ तो देखना, और उस कापी में एक लाइन भी आत्मा के बारे में कुछ लिखी हो तो समझ लेना हो सकता है। क्या मतलब, इतना चित्त चंचल रहता है कि लाखों रुपए का माल एक कोने में डाल दिया, यदि पुलिस आगे पकड़ ले कि किसका है, एक तन मेरा मिल ना, क्योंकि वो माल तो जाना ही है, हमें भी जेल में जाना पड़ेगा, और निगाह रखनी है 24 घंटा उधर, डाल देना अपने से दूर, कितनी आकुलता रहती है। वो लिख सकता है। जिसके चित्त में इतनी आकुलता हो वो एक तत्व का एक लाइन नहीं लिख सकता, समझ नहीं ना। तो बोल लीजिए वो समर्थन कैसे होगा, तत्व का चिंतन कैसे करेगा। अब 24 घंटा आपका ऐसा धंधा है कि कब कौन आ जाए, पुलिस आ जाए, वो आ जाए, हथकड़ी डल जाए, क्यों उसमें चित्त कितना चंचल रहेगा, उसमें समय साफ प्रदन साफ नहीं पढ़ा जाता है। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, हम तो सारी जिंदगी पढ़े, सारी जिंदगी सुने, हमें सम्मदर्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा है आपने बता दिया कि आपको नहीं है। तो यही मान के दस क्या क्यों नहीं हुआ, आपकी समझ में आ गया क्यों नहीं हुआ। जिसके चित्त में इतनी आकुलता है, चंचलता है, 24 घंटा जेल में जाने का डर है, 24 घंटा काले झंडे दिखाए जाने का डर है, समाज से बहिष्कृत होने का डर है, अन्याय और अनीति समझ गया ना, उसे समझदर्शन नहीं हो सकता। और जो मांस मदरा खाता है, अनंत जीवों का घात हो, ऐसे पदार्थों को सेवन करने में जैसे रंत्र मात्र भी संकोच नहीं है, क्यों तो बहनें ऐसी ऐसी साड़ियां पहनती हैं सिल्क की कि एक मीटर सिल्क को बनाना हो तो 5,000 कीड़ों को चाय जैसा उबालना पड़ता है, समझे ना। तो 5 या 6 फुट की 6 गज की साड़ी हो तो कितने 30,000 कीड़े उसमें उबलते हैं, और वो साड़ी को पहने तो क्या मुझे सम्मा दर्शन हो जाए, क्यों बोलो कहे जानते हुए तो एक कैसे पैदा होती है। अरे आजकल तो सिंथेटिक बढ़िया से बढ़िया साड़ियां आ गई ना, श्रृंगार सामग्रियां ऐसी जो हिंसा से उत्पन्न हुई हो। मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसा आचरण की शुद्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और शास्त्र में जो ये लिखा है कि सम्यक दर्शन के पहले चारित्र नहीं होता, तो ये चारित्र नहीं है, इसका नाम तो शास्त्र में सदाचार है। इसका नाम क्या है, सर्वानि सार द्रव्यम, कि पहले तुम्हारा इतना आचरण पवित्र हो, ये संयम नहीं है। संयम क्या है वो तो कौन सी तारीख, 22 तारीख को बताऊंगा। ये सदाचार क्या है ये बात है, और सदाचार भी जिसके जीवन में नहीं है। अभी तो 22 अभक्षों के नाम नहीं जानते हैं, अभी तो क्या खाने लायक पदार्थ और क्या खाने लायक नहीं है हम तो नहीं जानते हैं, जानते नहीं हैं। और हम सम्मान से रखें सरकार इधर भगवान आत्मा परसे दिन, नहीं तो जड़ की क्रिया है, चलता कि नहीं चलता। इसे तो व्यवहार से जीव कहा है, तो जैसे ना चार्य ने क्या लिखा है, मोटानी जी ये लिखा है कि व्यवहार से ही जीव है, और तुम इसे मारोगे तो व्यवहार से ही नरक जाओगे। लेकिन जाओगे वो व्यवहार है कि निश्चय उपाधि पर नहीं गए। तो इसलिए कहते हैं भाई कि शुद्ध सदाचार के बिना कभी आत्मा का अनुभव नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। क्या तो सदाचार में क्या है कि अन्याय अनीति और हक, अन्याय माने ऐसा राजविरुद्ध कार्य जिसमें हमें जेल जाने की संभावना हो, अनीति माने ऐसा कार्य जिसमें समाज में बहिष्कार हो जाए, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, और अवक्ष जिनमें पृथ्वी जीवों की हिंसा होती हो, ऐसी वस्तुओं को न केवल खाना पहनना ओढ़ना भी, जिसमें अनंत जीवों का घात होता हो, ख्याल में है ना, जैसे आलू आदि जमीकंद जो नशा पैदा करते हो। देखो भांग है ना, भांग उसमें तो चाय जैसी पत्ती है, तुलसी जैसी पत्ती है, उसमें तो एक भी जीव का घात नहीं होता है, सूखी सूखी पत्ती, क्यों वो क्यों अवस्थ है, क्योंकि नशा पैदा करती है। अरे नशे में नशेबाज को, शराबी कबाबी को उसका बाप तिजोरी की चाबी नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो तिजोरी संभाल नहीं सकता है, तो आत्मा की तिजोरी की चाबी कैसे मिल जाएगी उसे। ये अत्यंत होश वालों का काम है, कौन कौन सा, ये तत्व ज्ञान समझना और समझाना किनका काम है, अत्यंत जो होश में है उन्हें, नशा वाले तो बेहोश हैं, उन्हें हम कैसे समझाएं। एक सच्ची घटना सुनाता हूं, मैं इंदौर में रहता था, 40 साल पहले की बात है। तो एक भाई मेरे पास रात के 2 बजे आए, तो मनोहरलाल काला है, ये कोई चचेर मेरे के भाई थे, बगल में वही रहते थे। कि पंडित जी जल्दी चलो। क्यों? कि अम्मा जी जाने वाली है। तो मैंने कहा अम्मा जी की तबीयत खराब है तो तुम डॉक्टर मुखर्जी को बुलाओ। उस वक्त डॉक्टर मुखर्जी वहां बहुत प्रसिद्ध थे डॉक्टरों में, सारे एरिए में। मेरे तो अभियान वापिस गए, तो कह गए अब दवा का काम नहीं है, दुआ का काम है, अब तो इन्हें राम नाम सुनाओ, इसलिए हम आपके पास आए। गजब हो गया, डॉक्टर मुखर्जी बचाने आते हैं और पंडित रघुनंदन मारने जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बहुत समझाया, यानी आप कह रहे हो कि होश में नहीं है, कुछ सुनती नहीं है, बोलती नहीं है, तो मैं क्या समझाऊंगा वहां जाकर के। बोले नवोकार मंत्र ही सुनाना। लेकिन नवोकार मंत्र तुम भी मेरे से अच्छा बोल सकते हो, मेरा कोई गला अच्छा थोड़ी है। क्यों? तो मैंने मना कर दिया जाने को, तो उतना गुस्से में आए और बोले मैं जानता हूं तुम्हारा कोई मुमुक्षु होता ना तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए तुम हमारे घर नहीं जाओगे। मैंने उनसे कहा कि भैया बात तो सच्ची है, बात तो तुम ठीक कहते हो, कोई मेरा मोक्ष होता तो मैं जरूर जाता। क्यों जाता? इसलिए नहीं कि वो मोक्ष है, वो मेरी रोजाना की सभा का श्रोता होता, वो मेरी बात सुनता, तो उसका यदि बोल भी थक जाता, बेहोश भी होता, तो भी मैं सामने जाता तो मुझे देखकर उसे आत्मा याद आ जाता, और मैं ऐसी उंगली उठाता तो समझता एक आत्मा है भैया और छोड़ो सब जगत की संगत को, वो समझ जाता। लेकिन तुम्हारी अम्मा तो आकाश के प्रवचन में आए नहीं, यदि मैंने ऐसी उंगली बताई तो वो समझेगी मेरी आंख फोड़ने के लिए कह रहे हैं, वो नहीं समझ सकती है। समझे? जो जिंदगी से मेरे को समझते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उनको तो मेरी शक्ल देख करके ही आत्मा याद आता है। समझे? इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा, तुम्हारे यहां नहीं जाऊंगा। क्यों? कि कोई डॉक्टर मना नहीं कर सकता है, यदि मरीज बीमार हो डॉक्टर को कहें इलाज करने से, मना अमेरिका में तो नहीं कर सकता, अस्पताल में पहुंच जाए तो भर्ती करना ही पड़ेगा। क्यों? तो मैंने कहा मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूं जो मना नहीं कर सकता। क्या मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो जिनका दिमाग नशे में रहेगा, जिनने तत्व का अभ्यास नहीं किया, उन्हें हम कैसे समझा सकते हैं। बोले नवोकार मन सुनाना कि मैं नहीं। अरे भाई हमारे पास तो वो माल है दिनेश भाई कि जो एकदम होश में हो और कमर कस के सामने बैठे सुनने को, और हम कमर कस के बैठे तो हम समझा सकते हैं और वो समझ सकता है। लेकिन जो सुनता ही नहीं है, जो समझता ही नहीं है, उसे समझाने के लिए तो हम उसे बोलते हो। जो सुनते तुम तो आते नहीं समझने के लिए, तुम्हारी अम्मा जब चलती फिरती थी तब तो आई नहीं हमें सुनने समझने को। क्यों? और अब बेहोश है तो हमसे कहते चलो आप समझाने, हमारे पास तो वो माल है। अत्यंत होश वाले समझ में आए तो नशाकारक अवक्ष वालों को आत्मा समझ में नहीं आता, लोक निंद पदार्थों का सेवन करने वालों को आत्मा समझ में नहीं आता। तो अन्याय अनीति और अभक्ष इनका त्याग के बिना सम्य दर्शन नहीं होता, और सम्य दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। चारित्र क्या है? अनुवेद महावेद ये व्यवहार चारित्र है, और अंदर में आत्मा की लीनता वो निश्चय चारित्र है। कल बोल रहा था शायद परद्रे बनते भिन्न आप में कुछ सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन भई फिर सम्यागतारे त्रसोई, अपने आत्मा के स्वरूप में लीन होने का नाम वास्तव में सम्यक चारित्र है, वो निश्चय सम्यक चारित्र है। और ऐसे निश्चय सम्यक चारित्र वाले जीव के या जो बाहरी जीवन होता है उसे बोलते हैं व्यवहार चारित्र। उसका बाहरी जीवन कैसा होता है? अनुवृत रूप होता है, महावृत रूप होता है। मन पांच पापों का त्यागी का नाम तो अनुवृत महावृत है ना। पांच पापों का एक देश त्याग होता है, पांच पापों का सर्वदेश त्याग होता है। क्यों? वो संयम है, वो व्यवहार संयम है बाहर का सनिधि गुप्ति, और ये अंदर में आत्मा का अनुभव है निश्चय संयम है। तो जब आत्मा का अनुभव निश्चय संयम है, आत्मा की लीनता, तो जाने बिना लीन हो जाएंगे उसमें। क्यों? आप जानते हैं ज्ञान और ध्यान में क्या फर्क है? जानना उसका नाम ज्ञान, और जानते रहना उसका नाम ध्यान। पहली दफे जानना उसका नाम ज्ञान, और लगातार जानते रहना उसका नाम ध्यान। आत्मा को जाना तो ज्ञान कहलाया, और फिर लगातार उसको ही जानते रहे जानते रहे जानते रहे, उसका नाम ध्यान है कि नहीं? जब आप ध्यान करने लगते तो क्या करना पड़ता है? क्यों? रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ती है, और जिसकी रीढ़ की हड्डी चोरी हो गई हो उसको तो ध्यान भंग हो ही नहीं सकता है। ऊंट को तो हो ही नहीं सकता है, समरसन ऊंट को भी होता है। रीढ़ की हड्डी से क्या लेना देना है? आत्मा को जानना उसका नाम ज्ञान, और आत्मा में बराबर लगातार जानना, उसमें लिखा है कि ज्ञान का रिपीटेशन उसका नाम ध्यान है। लगातार एक चीज को जानना, वैसे तो रिपीटेशन दोष माना जाता है, ध्यान में भी धारावाहिक नाम का दोष माना जाता है, लेकिन ध्यान के मामले में कि जिस आत्मा को तुमने जाना उसी आत्मा को निरंतर जानते रहना, उसी आत्मा को निरंतर लीन रहना, उसका नाम है ध्यान। तो ध्यान के लिए जानना, ध्यान है चारित्र, और ध्यान के पहले जो वस्तु का स्वरूप जाना उसे ध्यान, तो ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, और ज्ञान हुआ तो ये मैं हूं ऐसा ज्ञान हुआ कि नहीं, और ये ज्ञान के साथ में ये सिद्धांत हुआ तो ये सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाता है। इसलिए कहते हैं भाई चरणानि सार द्रव्यम और द्रव्यानि सारी चरणम, ये दोनों सापेक्ष हैं। अगली पंक्ति में लिखा सापेक्ष है, और आगे ऐसा छंद है, चरण से सिद्धौ द्रव्य सिद्धि, द्रव्य से सिद्धौ चरण से सिद्धि। द्रव्य की सिद्धि होने पर आचरण की सिद्धि होती है, और आचरण की सिद्धि होने पर द्रव्य की सिद्धि होती है। देखो जिसमें अपनापन आ जाता है तो उसको ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। समय तो होने को बला है लेकिन बहुत मार्मिक बात है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ऐसे अपना एक परिश्रम का ये अंतिम है ना प्रसाद, तो उसे समझ लेना जरा मार्मिक ढंग से। ध्यान के लिए आप कहते हैं ना आजकल ध्यान के भी शिविर लगते हैं, फिर प्रैक्टिस होती है, फिर ऐसी एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके, लेकिन वास्तव में शिविर हमेशा ज्ञान के लगते हैं, ध्यान के नहीं। समोचरण में बैठकर भगवान महावीर ने आत्मा समझाया तो था, उनकी दिव्य ध्वनि तो खड़ी थी, लेकिन उन्होंने ध्यान की प्रैक्टिस भी कराई थी। कराई थी क्या बोलिए? वो 2500 वर्ष में कहीं एकाध जगह ऐसा उल्लेख तो मुझे बताना। ये बात मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैंने उन सब बड़े लोगों से पूछा है। क्या ये बात? यही शब्द इन शब्दों में कि है कहीं, बताओ तो मुझे, महावीर से लेके आज तक। हमारे तीर्थंकर तो ध्यान करने के लिए सम्वेद शिखर की चोटी पे गए थे, गिरनार की चोटी पे गए थे, किसी एयर कंडीशन हॉल में बैठ के नहीं किया था। और चोटी पे भी ऐसी जगह है कि बगल में कोई बैठ ही नहीं सके। अरे ज्ञान को भीड़ चाहिए और ध्यान को एकांत चाहिए। आप लोग नहीं हुए तो हम किसको समझाएं? ध्यान में तो भीड़ चाहिए ना, आदान प्रदान समझना समझाना होता है। कीर्तन करके समोषण में भी भीड़ होती है कि नहीं होती है? लेकिन जब वो चीजें ध्यान में बैठते हैं तो भीड़ का क्या काम, एकांत में जाते हैं तो फिर ध्यान होगा कैसे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अरे ध्यान की प्रैक्टिस तो सबको है, सब माहिर हैं ध्यान करने में। सवाल सिर्फ विषय बदलने का है। अभी दुनियादारी का ध्यान है, पति पत्नी का ध्यान रखता है, पत्नी पति का ध्यान रखती है, हम बाल बच्चों का ध्यान रखते हैं, बाल बच्चा हमारा ध्यान रखता है, कोई खाने पीने का ध्यान रखता है। अरे ध्यान के बिना तो दुनिया में ये काम नहीं हो सकता। आप यहाँ से अभी गाड़ी चला के घर पे जाएंगे तो ध्यान से चलाएंगे कि बिना ध्यान के, बोलो? बिना ध्यान के एक्सीडेंट हो जाएगा। एक कप चाय नहीं बनती बिना ध्यान के। दूध उगल जाता है, घी जल जाता है, रोटी जल जाती है। इस सब बातों में ध्यान रखना पड़ता है क्या? नहीं। और दिन रात हमारे ध्यान के बराबर प्रैक्टिस ध्यान से होती कि नहीं होती है? हमें समय पर खत्म करना है, इसका ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? तो ध्यान रखने की तो आदत सबको है। सवाल एक किसका, अभी तक हम विषय के सहाय का ध्यान करते हैं पर अब हमें आत्मा का ध्यान करना है, सिर्फ विषय बदलना है। ध्यान करने की प्रैक्टिस तो सबको है। देखो, एक लड़का और लड़की कॉलेज में पढ़ते थे और उनमें आपस में प्रेम हो गया। कैसे हो गया? अरे उसमें क्या है, साइकिल साइकिल से साइकिल टकराई, फिर आंख से आंख टकराई। क्यों? फिर परिचय हुआ, परिचय के बाद वो परिचय प्रेम में बदल गया। तो फिर किस्में खाली कैसी कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से नहीं तक करेंगे ही नहीं। बात यहां तक पहुंच गई लेकिन माँ बाप को दोनों को पता नहीं था। वो समझना, वो लड़का का पिता बार बार लड़के से कहता था एक लड़की देख के आओ, लड़की देखो, नहीं नहीं अभी मुझे शादी नहीं करना, अभी मुझे शादी नहीं करना। लेकिन उसे पता चल गया किसी से कि एक लड़की से प्यार करता है ये। तो उसके पिता ने बुला के कहा कि बेटा हम तुम्हारा संबंध करना चाहते हैं। नहीं नहीं अभी तुम्हें 4 साल पढ़ाई करनी है। नहीं, पूरी बात तो सुनो फिर मना करना। वो फला लड़की है ना, फला सेठ की, हमने सोचा है कि उसके साथ तुम्हारा संबंध कर दे। क्यों? तो पापा जैसी आपकी मर्जी, आपकी आज्ञा थोड़ी मैं टाल सकता हूँ। एक मिनट में आज्ञाकारी बन गया। तो 4 साल नामालूम कहाँ चले गए। तो सुनो पूरी बात, अभी जनवरी है, अप्रैल में तुम दोनों की परीक्षाएं होंगी, हम तुम्हारी कल सगाई कर देंगे, मई में शादी होगी 5 महीने बाद। ठीक है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है ठीक है, नहीं पहले सुनो पूरी बात कि ये 5 महीने के बीच में एक दूसरे के घर के चक्कर नहीं काटोगे। तो ठीक है नहीं काटेंगे। एक और सुनो कि हमारे टेलीफोन का बिल नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने तुम बात नहीं करोगे आपस में। ठीक है ठीक है। तो तीसरी बात और है कि बोलो जल्दी कि तुम इन 5 महीने तक एक दूसरे का ध्यान नहीं करोगे। बोलो, मानने को तैयार हो? क्यों? तो पापा बहुत हो गई, अब रहने दो, अब नहीं चलेगी। क्यों? तो मेरे हाथ में क्या है? जिससे परिचय हो जाता है, जिससे प्रेम हो जाता है, जिसमें अपनापन हो जाता है, उसका ध्यान आए बिना रहता नहीं है, उसका ध्यान करना नहीं पड़ता है। उसका ध्यान तो होता है, हो जाता है, और उससे रोकने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। क्यों? अब तुम जरा हमारी बात ध्यान से सुनो, अपने आत्मा में मत चले जाओ। तो आत्मा में जाने वाले ध्यान को रोकना पड़ता है। आत्मा की रुचि हो जाए तो उसको जाने उसमें ही जाएगा। जैसे उनके आपस में एक दूसरे की रुचि हो गई ना, तो वो ध्यान नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल में ना तो ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा था वेस्टर्न फिलोसफी में, कि इंटरेस्ट है वो अटेंशन को डाइवर्ट करता है। हमारा अटेंशन कहाँ जाता है? जहाँ इंटरेस्ट होता है, रुचि अन्य भीड़ होता है ना। तो अपना भगवान आत्मा में अपनापन आवे तो उसका ध्यान तो ऑटोमेटिक हो जा। कोई वो लगाने की, सिविल लगाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? لیکن ہم تو برابر ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کے بغل میں پتنی دونوں پتی پتنی بیٹھ کے آتما کا دھیان کرتے ہیں. ہماری تیسرے کرو نے شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا, لیکن جب دھیان کرنے گئے تھے جب پتنی کو چھوڑ کے گئے تھے یہ بات پکی ہے. اور ہمیں پتنی کے ساتھ بیٹھ کے دھیان کرنا ہے, ہمیں تو موکش میں بھی جائیں گے تو پتنی کے ساتھ جائیں گے. پھر وچار کرنا گمبھیرتا سے کیا بھائی دھیان کس کا دھیان کرنا ہے, آتما کا دھیان کرنا ہے. تو آتما میں تیرا گیان نہیں ہوگا, آتما کی رچی نہیں ہوگی تو آتما کا دھیان سمبھو نہیں ہے. اور ایک دفعہ آتما کا دھیان رچی ہو گئی اور گیان ہو گیا تو دھیان کیے بنا سمبھو نہیں ہے. دھیان تو ہونے کی چیز ہے بھائی صاحب, کرنے کی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پریم تو ہو جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے, لوگ میں کہتے ہیں پریم تو ہو جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے, ایسے دھیان تو ہو جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے, گیان کیا جاتا ہے. اس لیے گیان کے شبر لگتے ہیں, کیمپ لگتے ہیں, اپدیش ہوتا ہے. اس لیے کہتے چرنانی سار دربدم اور دربدانی سار چرنم, مانے شدھ ساتوک آچرن پوروک سما درشن گیان کی پراپتی ہوگی, اور سما درشن گیان پوروک ہمارا آچرن پوتر ہوگا, چارتر ہمارے جیون میں آئے گا. سبھی کے جیون میں چارتر بھی آئے, سنیم آئے, سداچار آئے, سما درشن گیان کی پراپتی بھی ہو. اس منگل بھاونا کے ساتھ میں ابھی کی بات سماپت کرتا ہوں. اور یہ تو اب آپ کو یاد ہے کہ کل سے بھی 26 تاریخ تک اسی ٹائم پر اپن یہاں چرچا کریں گے. آپ سب کو ہاردک آمنترن ہے, اور دنیش بھائی بھی آئیں گے.